सुबह के 5 बज रहे थे। रात को आरव और आयु दोनों साथ में गाड़ी में ही सोए हुए थे। सुबह आरव की आंख खुली तो हैंगओवर की वजह से उसके सिर में भयंकर दर्द था। क्या जरूरत थी इतने पीने की? आरव ने सिर पकड़कर कहा। उसकी आंखों में अभी भी नींद थी। जब उसने आंखें पूरी तरह खोली तो वो गाड़ी में था। मैं गाड़ी में कब सोया था? कुछ याद क्यों नहीं? आरव ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने ड्राइविंग सीट पर देखा तो वहां आयु सोई हुई थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। आरव ने उसे देखने की कोशिश की, तभी आयु ने करवट बदली। इससे पहले कि वो दूसरी तरफ झुककर गिरती, आरव ने अपना कंधा उसकी तरफ कर लिया। आयु का सिर उसके कंधे पर था। ये कौन है और मैं इसकी गाड़ी में कैसे आया? आरव ने याद करने की कोशिश की। उसने आयु का चेहरा देखने के लिए उसके चेहरे से बाल हटाए। आयु का चेहरा देखने के बाद अपने कंधे पर उसका सिर देखकर आरव के फेस पर स्माइल थी। ट्रस्ट मी, आज से पहले मेरी मॉर्निंग इतनी गुड कभी नहीं हुई। आरव सब कुछ भूलकर आयु को देख रहा है। नींद में भी गुस्सा, अच्छा लगा कि मेरे दिल में तुम्हारी इतनी बुरी इमेज होने के बावजूद तुम मुझे अपने साथ लेकर आई। आई होप मैंने कल रात को तुम्हें ज्यादा तंग नहीं किया होगा। आरव एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। वो काफी देर तक बिना कुछ कहे उसके चेहरे में खोया था। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। आयु ने रिंग की आवाज से आंखें मिचमिचाई तो आरव ने जल्दी से अपना फोन पॉकेट से निकालकर साइलेंट कर दिया। फिर आरव आयु का सिर सहलाकर बोला, आराम से सोई रहो, अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वो कुछ देर रुककर बोला, आई नो ये गलत होगा पर आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। बोलते हुए आरव ने हल्का सा झुककर आयु की आंख पर किस किया। फिर उसकी नजर आयु के गले पर गई जिसमें इन्फिनिटी शेप का प्लैटिनम पेंडेंट था। अब तुम मुझे फिर गलत समझोगी पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी अगेन। आरव ने अपना एक हाथ आयु की नेक पर रखा और उसकी चेन निकाली। उसने उसमें से पेंडेंट निकाल दिया था और उसकी जगह अपने गले में पहना क्रेसेंट शेप्ड पेंडेंट डालकर उसे वापस पहना दिया। मन तो नहीं कर रहा पर जाना होगा बेबी, कल रात के लिए थैंक्स और अब के लिए सॉरी। आरव ने आयु को धीरे से सीट पर लिटा दिया। जाने से पहले उसने आयु की नोज पर किस किया और गाड़ी से बाहर आ गया। आरव बाहर निकलकर आयु को देख रहा था। आयु अभी भी गाड़ी में बेखबर होकर सोई थी। उसे सोता देख आरव बोला, ये तो सच में बहुत लापरवाह है। मैंने इसे किस किया और उसकी चेन तक निकाल ली और इसे पता तक नहीं चला। ये तो मैं था, कोई बात नहीं, कोई और हुआ तो। मुझे जाने से पहले इसे उठाना होगा, पर साथ ही उठने के बाद इसने मुझे यहाँ देखा तो फिर से झगड़ा करने लग जाएगी और मेरी गुड मॉर्निंग को वर्स्ट मॉर्निंग में बदल देगी। कल रात जरूर मैंने इसको बहुत तंग किया होगा, तभी ये शहर से इतनी दूर मेरे साथ गाड़ी में सो गई। आरव वहां खड़ा खुद से बातें कर रहा था। उसने इधर उधर देखा तो वहां एक तरफ कुछ पेड़ लगे थे। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और आयु की गाड़ी के शीशे पर जोर से दे मारा। गाड़ी का शीशा टूट चुका था, उसी के साथ गाड़ी का इमरजेंसी सायरन बजने लगा। आई होप ये मॉर्निंग अलार्म तुम्हें जगाने के लिए काफी होगा, आरव ने बड़बड़ाकर कहा और तेज कदमों से चलते हुए एक पेड़ के पीछे चला गया। वहीं सायरन की आवाज से आयु की आंख खुल गई। वो उठी तो देखा उसके पास आरव नहीं था। कल रात जो भी हुआ था वो उसे अच्छे से याद था। लगता है शर्म के मारे खुद ही चला गया, आयु ने खुद से कहा। फिर उसकी नजर गाड़ी के टूटे हुए शीशे पर गई। हाउ, ये किसने किया? टूटे शीशे को देखकर आयु ने रोनी सूरत बनाई। जिसने भी ये किया है, बाय गॉड, एक बार पकड़ में आ जाए सिर फोड़ दूंगी मैं उसका, आयु ने गुस्से में कहा। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आई। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसे आसपास कोई नहीं दिखा, तो वहीं दूर खड़ा आरव उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आसपास कोई नहीं दिखाने पर आयु वापस गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आरव ने कबीर को कॉल करके वहां बुलाया और उसके साथ वो भी उस जगह से जा चुका था। आरव ने आयु का पेंडेंट अपनी चेन में डाल दिया था, तो वहीं आयु अभी तक इस बात से बेखबर थी कि उसके गले में अपने इन्फिनिटी शेप्ड पेंडेंट के बजाय आरव का क्रेसेंट शेप्ड पेंडेंट था। पूरी रात आरव के साथ गाड़ी में बिताने के बाद आयु वापस अपने घर लौट चुकी थी। अनु के जाने के बाद अक्सर उसका इस तरह रातों में बाहर रुकना आम हो गया था, इस वजह से तारा उससे काफी गुस्सा थी। आयु कल रात भी घर नहीं आई थी। उसका इंतजार करते हुए तारा सिमरन के साथ गार्डन एरिया में थी। जैसे ही आयु की गाड़ी घर के मेन गेट से अंदर आई, तारा गुस्से में खड़ी हो गई। मम्मी जी प्लीज थोड़ा प्यार से काम लीजिएगा, सिमरन ने उन्हें समझाते हुए कहा। अब तक प्यार से ही समझाते आ रहे हैं, कभी ज्यादा स्ट्रिक्टली बात नहीं की, उसी का ये नतीजा निकल रहा है कि ये बस अपनी मनमानी कर रही है। परसों रात को भी घर नहीं आई थी, कल रात भी बाहर थी, आखिर चल क्या रहा है इसकी लाइफ में, तारा ने गुस्से में जवाब दिया। गाड़ी पार्क करने के बाद आयु अपनी गाड़ी से बाहर निकली। तारा तेज कदमों से चलकर उसके पास चली गई। उन्हें रोकने के लिए सिमरन भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। उन्हें अपने पास आता देख आयु वहीं रुक गई। उसने उन्हें देखकर गहरी सांस लेकर छोड़ी और मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, आई विश आज मेरी सेवियर मेरे पास होती। अब इन्हें कैसे समझाऊं, मैं जानबूझकर बाहर नहीं रहना चाहती। आयु के पास आते ही तारा ने तेज आवाज में कहा, कहाँ थी तुम पूरी रात? नाइट ड्यूटी का बहाना मत देना, कल संडे था। तारा उसके सामने हाथ बांधकर खड़ी थी। फिर भी मैं हॉस्पिटल गई थी, आयु ने कंधे उचकाकर कहा। मैं रात की बात कर रही हूँ आयु, तुम पूरी रात कहाँ गायब थी? अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का है तो बता दो, शादी करके। तारा बोलते हुए रुक गई। उनका ध्यान आयु के गले पर गया तो उसका पेंडेंट बदला हुआ था। तारा ने आयु के गले पर हाथ लगाकर उस पेंडेंट को पकड़ा और गौर से देखा। तो मैं सही थी, तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का है। इस पेंडेंट को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये किसी मेल के लिए डिजाइन किया गया है। बाकी सब तो ठीक है, पर तुम उसे इतनी आसानी से भूल जाओगी ये मैंने नहीं सोचा था। वो इन्फिनिटी शेप का पेंडेंट तुम दोनों के 16 साल के होने पर बनाए गए थे, जो तुम दोनों ने ही पसंद किए थे, और साथ ही एक दूसरे से ये वादा लिया था कि उसे कभी नहीं निकालोगी। वहीं सिमरन को भी हैरानी हो रही थी। आज से पहले आयु ने उस पेंडेंट को कभी नहीं निकाला था, और ना ही अनु ने। सिमरन ने हैरानी दिखाते हुए कहा, सच में तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी लाइफ में कोई नहीं है भाभी, और मॉम आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी, मैंने अपना पेंडेंट नहीं निकाला है। आयु भी उनकी बातें सुनकर चौंक गई। वो तुरंत गाड़ी के रियल मिरर की तरफ पलटी और अपने पेंडेंट को देखा। अपने गले के बदले हुए पेंडेंट को देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने आंखें बंद की और अपने मन में कहा, तुम्हें तो जितने नाम दूं वो कम है। पहले कैसोनोवा, फिर मर्डरर, शराबी, और अब चोर कहीं के। मेरा पेंडेंट चुरा लिया तुमने, तुम इतनी चीप हरकत करोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब वहां गुस्से में खड़ी होकर क्या सोच रही हो, बताओ कि ये किसका है? तारा ने हाथ बांधकर पूछा, जिस पर आयु ने बिना सोचे समझे जवाब में कहा, ये उस आरफ खुराना का है। आयु उनके सामने आरफ का नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन हड़बड़ाहट में उसने सच बता दिया था। उसके मुंह से आरफ का नाम सुनकर सिमरन और तारा एक बार फिर चौंक गई। तुम सच में आज हमें झटके पर झटके दे रही हो, आरफ खुराना ये वही है ना जिसका अनु के साथ वीडियो वायरल हुआ था? सिमरन ने पूछा।
अब तक मैंने बहुत छूट दे दी तुम्हें, कभी नहीं पूछा कहाँ जाती हो, क्या करती हो, लेकिन अब तुम्हारे डैड से बात करने का सही टाइम आ गया है। तुम उस आरफ खुराना को डेट कर रही हो जिस पर तुम्हारी बहन को मारने के इल्जाम लगे थे। तुम सच में बहुत जल्दी बदल गई हो आयु, तारा ने गुस्से में कहा और वहां से अंदर जाने लगी। सच कहूं तो इसकी उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। मैं तो मम्मी जी को समझा रही थी कि वो तुमसे प्यार से बात करे, लेकिन इस पर तुमने हद कर दी आयु। सिमरन भी उसे गलत समझ रही थी, वो भी अपनी बात कहकर अंदर चली गई। आयु अब तक वहीं पर खड़ी थी। उसने गुस्से में अपने पैर जमीन पर पटके और कहा, हाँ बस अब यही बाकी रह गया, मैं उस आरफ खुराना को डेट करूंगी। ऐसा करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। आयु ने सिर हिलाया और अंदर चली गई। पूरी रात गाड़ी में सोने की वजह से उसके कमर में दर्द हो रहा था, इसलिए वो अपने कमरे में आकर सीधा सो गई। उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। तैयार होने के बाद उसका अपनी ड्यूटी पर जाने का टाइम हो गया था। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। साक्षी विस्टर आहूजा के काम से बाहर गई हुई थी। वो फोन पर उनसे बात करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ लौट रही थी। हाँ पापा, मैंने यहाँ सब देख लिया है। मंथन आज लैंड देखने गया था ताकि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सके। साक्षी ने उन्हें यहाँ जो भी चल रहा था उसके बारे में बताया। ठीक है बेटा, तुम वहाँ हो तो मुझे तसल्ली रहती है, वरना मंथन तो कुछ बताता ही नहीं है। और थैंक यू सो मच वहाँ रहकर भी मेरे सारे शेड्यूल को अच्छे से संभालने के लिए, मिस्टर आहूजा ने कहा। साक्षी के वहाँ जाने के बाद भी उनके काम पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। मैंने उसको प्रॉमिस किया था तो उसे तो निभाना ही था। चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कहकर साक्षी ने कॉल कट किया। वो तेज कदमों से चलते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी, तभी पीछे से एक गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर दी। ये काफी जोरदार टक्कर थी। साक्षी उछलकर कुछ दूर आगे जा गिरी। जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था वो कोई और नहीं, माहिरा ड्राइव कर रही थी। उसे भी ये एहसास हो गया था कि ये एक जोरदार टक्कर थी। ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, प्लीज उसे मरने मत देना वरना मैं यहाँ अटक कर रह जाऊंगी, माहिरा ने मन ही मन प्रार्थना की। माहिरा जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली। तब तक साक्षी के आसपास अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। उसके माथे पर चोट लगी थी जिससे खून बह रहा था। ये एक खतरनाक एक्सीडेंट था जिसमें साक्षी को काफी सारी चोटें लगी थी और इतनी ही देर में उसका काफी खून बह गया था। अरे मैडम, गाड़ी चलानी नहीं आती है तो क्या जरूरत है ऐसे सड़क पर लेकर निकलने की? आप लोग तो अपनी महंगी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और पीछे से हम मासूम लोग बेवजह कुछ ले जाते हैं, भीड़ में से एक आदमी ने कहा। माहिरा ने उसकी तरफ गुस्से में देखा। तभी भीड़ से एक और आवाज आई, बहुत खून बह गया है पर जिंदा है अभी। भीड़ में सब माहिरा को अजीब नजरों से देख रहे थे। उसने मामले को संभालते हुए कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वैसे भी ये फोन पर बात कर रही थी, गलती इसकी भी है। यहाँ मुझसे बहस करने के बजाय इसे हॉस्पिटल ले जाने में मेरी हेल्प करेंगे तो ये बच भी सकती है। उसके बाद वो भीड़ को चीसते हुए अंदर गई और साक्षी का चेहरा देखा। ये तो वही है, आरफ की फ्रेंड, इसे मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? वैसे भी इसकी वजह से कल मेरी और आरव की अच्छी खासी बहस हो चुकी थी और आरव को पता चला तो उसे यही लगेगा कि मैंने जानबूझकर इसे मारा है, माहिरा ने बड़बड़ाकर कहा। उसने ये जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन साथ ही माहिरा अच्छे से जानती थी कि सारा इल्ज़ाम उसी पर आने वाला है। उसके बावजूद वो लोगों की हेल्प लेकर उसे वहां के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर गई।